الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ دلچسپ اور منفرد معلومات۔ مدنی چینل کی کیا ہے بات، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کیا ہی بات ہے، دن رات رحمتوں کی کیا ہی چھما چھم برسات ہے۔ ہر سلسلہ مدنی چینل کا بہترین سوغات ہے۔ اب ہمارا یہ سلسلہ کون سا ہے؟ نام ہے صحت کے راز، سیکرٹس آف ہیلتھ۔ آپ ساتھ رہیں گے ہمارے انشاءاللہ عزوجل، ٹاپکس شفل ہوتے رہیں گے، یعنی مختلف ٹاپکس پر ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی رہنمائی میں۔ جدید تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ صحت کے راز، تو آج ہم کس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں؟ دس از اے سسپینس۔ ناؤ وی ہیو اے باکس، ہمارے پاس ایک باکس ہے، اینڈ لیٹس سی ورڈز ان سائڈ دا باکس۔ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، جی ہاں، کامیابی کے راز، دی سیکرٹس آف سکسیس۔ یعنی صحت کے راز تو ہمارے سلسلے کا نام ہے، اس میں آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کامیابی کے راز۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحت کے راز، جب یہ موضوع ہمیں اسائن ہوا تو اچانک ایک خیال آیا کہ صحت کے راز، جی ہاں، ہیلتھ، صحت، دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک وچ اے ہیومن از کنسرن۔ ایک انسان کے لیے سب سے اہم ترین موضوع یہی ہے، کیونکہ بیسکلی صحت ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ ایک مائٹی رچ ہو یا ایک پور پنیوری ہو، معاشرے کے ہر سیگمنٹ کے افراد کا ایک بڑا زبردست یہ توجہ طلب بات ہوتی ہے کہ میری صحت تو نہیں خراب ہو رہی۔ اور ایک بینگ اے مسلم، الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسا معیار ہے کہ تمام کامیابیوں کا راز اسی سکول آف تھاٹ، اسی ہستی مبارکہ اور اسی بیکن ہاؤس میں پوشیدہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت کے وہ روشن پہلو، وہ معیار قطعی ہیں۔ ایسی ورسٹیلٹی، ایسا ڈائنامزم اتنا ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ، انفرادی، اجتماعی طور پر، معاشرہ ایز اے ٹوٹل یونٹ، مائکرو، میکرو، الحمدللہ عزوجل سب کی گائیڈنس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے روشن پہلو بہت بہت کافی ہیں۔ خیر القرون، بہترین زمانہ، یعنی وہ زمانہ جس نے حضور کی صحبت پائی، اٹ از بیسٹ آف آل ایراز، تمام زبانوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور ہیلتھ، صحت تو ایک بات ہے، یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں، کوئی ایک ملک بھی آپ دیکھ لیجئے، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں جو کہ اس ملک کی مین مینجمنٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ فارسٹری ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، سیکیورٹی سروسز ہوتی ہیں، ایگریکلچر ہوتی ہے، انڈسٹری ہوتی ہے، میڈیا ہوتی ہے۔ سو وی آر ناٹ لیونگ ان اے ویکیوم، وی آر ناٹ لیونگ ان این آئسولیشن، دیر از اے کمپلیٹ نیٹورک آف ڈپارٹمنٹس۔ تو صحت تو اس میں سے ایک شعبہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے پہلے بات کی ہے، لیکن آپ ذرا معاشرے کے دیگر شعبوں کی طرف نظر دوڑائیے۔ سوشل ریفارمز کو دیکھیے، معاشرے میں تبدیلی لانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ سمجھ لے ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جابس فار اے پرسن، اٹس ویری اسٹرینس، بڑا مشکل کام ہے کہ معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہو، آپ اس معاشرے کو اس ٹریک سے ہٹا کے اصلاح کی طرف لے کر آئیں اور اس کا ٹریک بدل دیں۔ اور پھر آپ دیکھیے، جس معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ایسا معاشرہ تھا کہ اسے زمانہ جہالیت کہا جاتا ہے۔ ننی پھول جیسی بچی جب پیدا ہوتی، اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ابھی سرکت کو آپ دیکھ لیں، اس کو سکروٹنائز کریں، آپ کو پتا چل جائے گا اس معاشرے کے حالات کیا تھے، کلچر کیا تھا، सोशल नॉर्म्स क्या थी, उन लोगों का माइंडसेट क्या था, और जब ये एक बात है तो दीगर रसूमात कैसी होंगी। और फिर देखिए इसी मुआशरे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान हक बुलंद फरमाया और ऐसी इस्लाह फरमाई कि यही लोग पूरी दुनिया को लीड करने वाले बन गए, अदबो आदाब सिखाने वाले बन गए और मोस्ट आइडियल सोसाइटी बन के उभरे पूरी दुनिया के लिए। आज ये कयामत तक के लिए रोशन सितारे और रहनुमाई के मेयार बन गए। सो यू कैन सी द सोशल रिफॉर्म व्हाट वाज देयर एंड व्हाट हैपेंड, टोटल रेसिप्रोकल। तो फिर और देखिए आगे बढ़ते चले जाइए, एक मिलिट्री प्रूडेंस होती है, गौर से मुताला कीजिए मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का, गजवात इनमें जो स्ट्रेटजीज और प्लान्स बनाए गए, किस अंदाज से मिलिट्री एडवांसमेंट की गई, फतेह मक्का पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से मक्का शरीफ मदीना शरीफ से रवानगी फरमाई मक्के की तरफ, और फिर अपनी जिंदगी मुबारका के अंदर आपने जो सिपा सालार थे इस्लामी फौज के उनको किस तरह से दीगर ममालिक की तरफ भेजा। अब देखें हर बंदा हर चीज का माहिर तो नहीं होता, जो बातें मैं कर रहा हूं आप इस फन के माहिर को वो हिस्ट्री पढ़ाएं, इस फन के माहिर को ये हिस्ट्री ये मिनूवर्स ये प्लान्स बताएं और सिखाएं, वो आपको बताएगा कि कितने जबरदस्त इंपेकेबल और फ्लॉलेस बातें हैं कि इसमें यकीनन कोई गलती का शुबा तक नहीं है, मैचलेस कोई जोड़ नहीं है। और इसी तरह की इकोनॉमी होती है मईशत, इसको कैसे हैंडल किया जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जरी असूल इरशाद फरमाए इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूद की बेखकनी है, इरेडिकेट इंटरेस्ट, कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ऐलाने जंग है। सूद की वजह से आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो रिच और पुअर का गरीब अमीर का फर्क बढ़ता चला जा रहा है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में इंसान गिरता चला जा रहा है, और एक वेब बैग एक ये जाला बन जाता है यूं समझिए जिसमें इंसान जकड़ जाता है, उसके पैसे भी कम नहीं हो रहे होते और वो मुसलसल कर्जे पर कर्जे चढ़ाए अपने ऊपर अपनी जिंदगी को और अजीरन बना रहा होता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और एक सेंसस के मुताबिक दुनिया में ऐसे लाखों कारोबार हैं जो कि सूद की वजह से बंद हो गए, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू पे बैक द इंटरेस्ट एंड नाउ दीज एंटरप्राइजेस आर बैंकक्रप्ट। और देखिए मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पैसा स्टकअप हो जाता है और पैसे के अंदर वो रवानी नहीं रहती जब सूद लिया जाता है। अब इसकी एक बुनियादी सी मिसाल समझिए, ये 50 का नोट मेरे पास से इन भाई को जाता है, मैं इनको 50 का नोट देता हूं, इनसे आटा ले लेता हूं। अब ये 50 का नोट 100 का हो गया, दो जगहों पर चला गया ना, ये भाई उन भाई को ये 50 का नोट देते हैं और उनसे जूती खरीद लेते हैं, शूज खरीद लेते हैं, वो भाई आगे उनको देते हैं और उनसे दालें खरीद लेते हैं, वो भाई आगे उनको देते हैं उनसे कोई और चीज खरीद लेते हैं। ये 50 का नोट जब पूरी मईशत के अंदर घूमकर वापस मेरे पास आएगा तो ये 50 रुपए नहीं रहेंगे, ये लाख रुपया बन चुका होगा। ये होती है सर्कुलेशन ऑफ मनी, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ट्रेड। ये बिजनेस का फायदा होता है कि बिजनेस में ये पैसा किसी खास जगह पे जाके रुक नहीं गया बल्कि घूमता रहा, हर एक को फायदा देता रहा। और अगर इंसान के जिस्म में खून मदनी चैनल के नाजरीन गर्दिश करता रहे तो उसका फायदा होता है, अगर वो खून रुक जाए उसका क्लॉट बन जाए वो जम जाए तो फॉलेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, यू हैव टू गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड दिस इज द सेम व्हाट इज हैपनिंग कि अगर आपके लाखों लाख करोड़ों रुपए पड़े रह जाएंगे वो सूद के चक्कर में फंस जाएंगे तो मुआशरे को उसका फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि कारोबार को पसंद किया गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफहूम भी है कि रोजी के 9 हिस्से कारोबार के अंदर हैं। सो सी पूरी जमाने की स्क्रूटनी करके आप एक एक शोभा निकाल लीजिए, आपको रहनुमाई का वो मेयार मिलेगा जो कि मैचलेस है। अब एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, वो देखे असहाबे सुफा को किस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम लेक्चर्स दिया करते थे, वो एक यूनिवर्सिटी की तरह का आप इदारा समझिए जहां पर रेजिडेंशियल है और जो जो वहां से पढ़े उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जाके दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, बल्कि वहां के पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा पर हुकूमत की और अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस दीन इस्लाम को वहां नाफिज फरमाया। और ये जो मैंने तिजारत की बात की, जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर आपके हुक्म पर तिजारत जो करते हैं तो कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि दुनिया में कई खित्तों में इस्लाम ताजिरों के जरिए फैला, क्योंकि एक ताजिर मदनी चैनल के नाजरीन वो एक बेटर पोजिशन में होता है कि वह तबलीग कर सके, बिकॉज ट्रेड विजिट्स आर देयर, बिजनेस विजिट होते हैं, ताजिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरी से तीसरी जगह पर जाते हैं, और अलोंग विद ट्रेड देयर इन ए बेटर पोजिशन टू प्रीच। बट नाउ अलोन प्रीचिंग इज नॉट इनफ, प्रीचिंग अलोंग विद प्रैक्टिस, यू मस्ट प्रीच एंड यू मस्ट प्रैक्टिस, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, यू मस्ट प्रीच एंड यू मस्ट प्रैक्टिस। अब यही उन ताजिरों का तर्ज अमल था जो उन्होंने हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करके सीखा कि हमने धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, और उनके इस तर्ज मुआशरत को और तर्ज तिजारत को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाया करते थे। और फिर अगर आप अज़दवाजी जिंदगी की बात करते हैं, मैरिटल लाइफ की, तो देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा अज़वाज मुतहरात में हमारी मां बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से जब पूछा गया, ये मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि आपका खुल कैसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, आपका खुल कुरान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, नाउ दिस इज एन एविडेंस, गवाही हो गई एक। और फिर देखिए अगर कोई पेरेंट्स में से है, कोई वालिदैन है और वो रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, तो वो देखिए खातून जन्नत हजरत फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन के नाना जान ने कैसी तरबियत फरमाई उनकी, और फिर इन्होंने कैसी एग्जाम्पल सेट की कि तमाम मुआशरों में, किसी भी दौर के इंसानी मुआशरे में आपको ऐसी मिसालें नहीं मिलेंगी। तो फिर मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें बताती हैं, सिखाती हैं, समझाती हैं और हमें इंकरेज करती हैं कि हमारी लेगेसी कितनी जबरदस्त है, हमारी विरासत कितनी जबरदस्त है और हमें कितना बेहतरीन मियार मिला, स्टैंडर्ड मिला। और हमने यही करना है कि कामयाबी को अगर हासिल करना है, सेहत के राज तो एक टॉपिक है और हमने तो वसी तौर पर डिस्कस किया कि कामयाबी का राज कहां पोशीदा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, जबान एक चीज होती है ना दुनिया में, इल्म के हवाले से हम देखते हैं, जब अरब शरीफ के अंदर इल्म के हवाले से फसाहत और बलागत का बड़ा जोर था, बलीगाना शायरी थी, तकरीर का जोर था, अरबी जबान वैसी बड़ी डाइवर्सिफाइड है, इसकी जो लिंग्विस्टिक्स हैं और इसके थेसोरस जो है बहुत ज्यादा बड़ी है, एक एक चीज के बहुत से नाम आपको मिल जाएंगे। और वो जो अरब शोरा थे, जो पोइट्स थे, उनकी फसाहत और बलागत, उनकी पोइट्री, उनकी प्रोज, उनकी नरेशन, उनकी इलस्ट्रेशंस बड़ी मशहूर थी। लेकिन उन्हीं के दरमियान कुरान नाजिल हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब उनको कुरान दिया, उनको याद नहीं रही उनकी शायरी, ऐसे वाकयात भी मिलते हैं कि कोई जोड़ नहीं ला सकता था, एक आयत कुरान के मुकाबले में अरब का सबसे फसीह बलीग शायर वो भी हमें बिल्कुल हरा हुआ नजर आता है कि मैं इस कलाम के आगे कुछ पेश नहीं कर सकता। सो दिस इज द पावर ऑफ लैंग्वेज, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो कुरान हमें अता फरमाया। और फिर आज देखिए एक बहुत बड़ा मसला इमिग्रेशन का है, हिजरत का। पूरी दुनिया के अंदर अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है यूएनओ का, जहां पर इन मुहाजरीन को डिस्कस किया जाता है। याद रखिए एक रूल है कि जब भी हिजरत की जाएगी और वो हिजरत मजबूरी के तहत होगी, यानी हर एक को राइट है कि अपनी नेटिव सिटी में रहे, उसका हक है कि जिस घर में वो रहता है, जो उसका आबाई घर है, वहां पे उसको रहने की खुली आजादी हो, खाना मिले, रहने में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। अगर वो किसी मजबूरी के तहत हिजरत करता है, खाने का मसला है और वहां पर रहने में सिक्योरिटी का इशू है, अब ये चीज खतरा बन सकती है। लेकिन अगर वो लिबर्टी के साथ, आजादी के साथ हिजरत करता है, तो ये चीज तबलीग दीन की और इल्म के फैलने की वजह बनती है। अब देखिए जब हिजरत हुई मक्के शरीफ की तरफ, और उस वक्त ढेर सारे मुहाजरीन थे जो मक्के शरीफ से मदीने शरीफ में आए। अब ये मुहाजरीन है जो मक्के से आ गए मदीने शरीफ में, और मदीने शरीफ के अंदर अंसार हैं जो कि रेजिडेंट हैं, जिनका आबाई घर है मदीना शरीफ। नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्राउड, अंसार जो मदीना शरीफ में है, मुहाजरीन जो मक्का शरीफ से आए, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया इन लोगों का। अब देखिए वहां पर मदीने की नई नई स्टेट थी, किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको डील फरमाया, इधर से एक मुहाजिर, इधर से एक अंसार, दोनों को भाई भाई बना दिया। और फिर वो सारा डेडलॉक खत्म हो गया, हर एक अपना घर हो गया, अपनी तिजारत हो गई, और आज दुनिया में जो 250 मिलियन मुहाजरीन मौजूद हैं, इतने ज्यादा मुहाजरीन हैं ये मदनी चैनल के नाजरीन, इतने ज्यादा लोग हैं ये कि अगर इनको इकट्ठा किया जाए ना तो ये दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे स्ट्रेटेजिकली, कितने प्लान्ड अंदाज से इतने बड़े मसले को एकदम हल फरमा दिया। अपनी इस विरासत को, अपने इस अजीम असासे को सीखे तो सही, समझे तो सही, फिर पता चलेगा। और फिर अगर हम फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं कि दीगर ममालिक के साथ जो माहदे वगैरह किए जाते हैं, तो देखिए सुलह हुदैबिया इंटरनेशनल सिनेरियो में इतना जबरदस्त माहदा था ये, उस वक्त की नजाकत और तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जो ये माहदा किया गया, और इस माहदे की वजह से मुसलमानों को जो बेहतरीन नतायज मुस्तकबिल में मिले, इससे बढ़कर हिकमत अमली का कोई शाहकार हमारे सामने नहीं है। और फिर खुतबा हिज्जतुल विदा, जबरदस्त मैनिफेस्टो, ऐसा चार्टर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, ऐसा आइन इंसानियत को दिया जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये 100% वैलिड है अप टू जजमेंट डे। आज भी देखिए आप, ब्लैक एंड व्हाइट, काले और गोरे की जंग नजर आती है दुनिया में। आप 100 साल की कारकर्दगी देख लें इंसानियत की, पूरी दुनिया के अंदर आपको लगेगा कितनी कत्ल गारत हुई। और अब देखिए खुतबा हिज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर फजीलत हासिल नहीं। अब क्या यह सिर्फ एक बात थी? वॉज दिस अ डेलिकेट ओरेटरी? नो, दीज वर द लेजेंडरी वर्ड सपोर्टेड बाय प्योर एक्शन, पूरा अमल है इसके पीछे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो और बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हो, दोनों एक दस्तरखान पर हमें खाना खाते हुए नजर आते हैं, आपस में मेल जोल करते हुए नजर आते हैं, और वाकई इतनी जबरदस्त एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच हमें किसी और जगह पर नजर नहीं आती। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सप्लोर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सप्लोर। वी हैव टू एक्सप्लोर, हमें खोजना है, क्योंकि राज को हमेशा खोजा जाता है, राज को हमेशा जाके पकड़ा जाता है। कितनी प्यारी बात किसी ने कही कि हकीकत को ढूंढना पड़ता है, अफवाह तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है, हकीकत को ढूंढना पड़ता है ना। सो यू हैव टू एक्सप्लोर। वैसे तो हम कामयाबी के पीछे भागते हैं, अगर एक स्टूडेंट मुझे सुन रहा है तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप कामयाबी के पीछे नहीं भागते? भागते हैं। मैट्रिक के बाद मैं कहां दाखिला लूं, प्री मेडिकल में जाऊं, प्री इंजीनियरिंग के अंदर जाऊं, कॉमर्स करूं या आईटी में जाऊं? काश ऐसा हो जाए कि हम दरसे निजामी में दाखला लें, आलमे दीन बने, और इतनी फजीलत जो इल्मे दीन सीखने की आई है उससे हिस्सा हासिल करें। लेकिन एक ट्रेंड है मुआशरे का कि हम चैनल्स चुनते भी कामयाबी कहां है, और जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है उस वक्त भी हम कामयाबी के पीछे भागते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, दीगर दोस्त अहबाब से पूछते हैं कि भी बताओ, इसी मुल्क में रह के जॉब करूं, कारोबार कर लूं, मुल्क से बाहर चला जाऊं, कामयाबी कहां है? वी आर एक्सप्लोरिंग कामयाबी, वी आर सर्चिंग कामयाबी ऑल वे राउंड। और फिर ये जो तरीका है कि जो इंसानी जिंदगी का बन चुका है हमारा मुसलमानों का, ये कुछ मुनासिब नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गो फॉर हाइब्रिड अप्रोच, कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, कि इसकी बात पे थोड़ा सा अमल कर लिया, कुछ इसकी बात पर अमल कर लिया, ये तरीका मुनासिब नहीं है। चलें, सिर्फ मुझे इतना बताइए, ये बात क्लियर करते हैं, हमें दीन इस्लाम ने हलाल और हराम का फर्क बताया है। हलाल इसमें सवाब है, हलाल इसमें अल्लाह की रजा है, हलाल इसमें सेहत है, और दूसरी तरफ हराम, हराम में गुनाह है, हराम में अल्लाह का गजब उभरता है, हराम में बीमारी है। अब देखिए, हमने इन असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। वी आर मुस्लिम्स एंड वी शैल फॉलो ऑल दीज प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट इज प्रोहिबिटेड एंड व्हाट इज परमिसिबल, हलाल और हराम। क्या हम किसी ऐसे मुआशरे को फॉलो कर सकते हैं जहां पर हलाल और हराम की तमीज ही नहीं है? मैंने हलाल और हराम को मद्देनजर रख के जिंदगी का हर कदम उठाना है, खाना हो, पीना हो, पहनना हो, बोलना हो, चलना हो, जो कुछ हो, क्या करना है? हलाल और हराम को मद्देनजर रख के अपनी लाइफ को ड्राइव टुवर्ड्स द फ्यूचर करना है। क्या मैं किसी ऐसे मुआशरे को फॉलो कर सकता हूं जहां हलाल और हराम का फर्क ही नहीं है? नो, सिस्टम कलैप्स कर जाएगा, मेंटेलिटी कंफ्यूज हो जाएगी, काम बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब खाने की बात करते हैं, अगर आप उस माशरे से खाने की तरकीबें सीखना शुरू करेंगे तो वहां तो हलाल हराम का फर्क नहीं है, हो सकता है वो खाने की उस तरकीब के अंदर शराब भी डालते हो सकता है खाने की तरकीब में वो ऐसे मसाले डालते हो जो कि शरी तौर पर जायज नहीं है डालने, बिकॉज दे हैव नो पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन, दे डोंट केयर फॉर व्हाट इज हलाल और हराम। तो फिर हमें देखना है कि हमने किसको फॉलो करना है। अब देखिए, ये जो सेहत का पूरा सिलसिला हमारा चल रहा है, हेल्थ का, सेहत के राज हमारे सिलसिले का नाम है ना, और सेहत के राज के अंदर सबसे अहम तरीन तो खाना होता है, खाना पीना, ये सेहत से डायरेक्टली लिंक होता है। दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, जब मैं ये सिलसिला मदनी चैनल पर करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, प्यू रिसर्च सर्वे के मुताबिक तकरीबन 7.5 अरब इंसान दुनिया में बसते हैं। ये जितने इंसान हैं, इन्होंने खाना खाना है, इन्होंने पानी पीना है, जब तक जिंदा रहेंगे खाना भी खाएंगे पानी भी पिएंगे। खाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, फर्क फर्क होता है, और यकीनन एक मुसलमान का अंदाज पूरी दुनिया के इंसानों से मुख्तलिफ, मुनफरिद, यूनिक और पैरामाउंट होना चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के सांचे में ढला हुआ। हलाल खाना खाएं, सबसे पहले फरमाया मुसलमान जब हलाल का पहला लुकमा खाता है उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। खाने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लें, खाना भी सवाब बन जाएगा। खाने से पहले खाने का वुजू कर लें, ये खाने का वुजू नमाज के वुजू की तरह नहीं होता, दोनों हाथ गिट्टों तक यानी एंकल्स तक धोने होते हैं, दोनों हाथ गिट्टों तक धोएं और मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुल्ली कर लेना। दोबारा सुनिए, दोनों हाथ गिट्टों तक धोना और मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुल्ली कर लेना, ये खाने का वुजू है। मिलकर खाना खाएं। अब ये मदनी चैनल के नाजरीन में स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं, सबसे पहला स्टेप था नियतें कर लें, हलाल खाना खाएं, वुजू कर लें, मिलकर खाना खाएं, खाना बरकत वाला हो जाएगा। खाना दस्तरखान पर हो, हर लुकमे पर अल्लाह का जिक्र करें और खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ लें। जिस खाने पर, यह इरशाद फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम ना लिया गया वो बीमारी है और उसमें बरकत नहीं होती, और उसका कफारा यह है कि अगर दस्तरखान ना उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर कुछ खा ले, और दस्तरखान उठा लिया गया तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उंगलियां चाट ले। खाने की दुआ पढ़कर खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जहर भी होगा तो असर नहीं करेगा। अब देखिए, ये जितने वायरस, जरासीम, बैक्टीरियाज खाने के अंदर होते हैं, अगर आपने हाथ भी धो लिए, दुआ भी पढ़ ली, तो इंशाल्लाह हिफाजत होगी। ऐसे भी कई केसेस हमारे सामने आए, जिस तरह आबे जमजम पर तहकीक की गई थी, आम पानियों की तरह नहीं है वो, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ तब्दीलियां हैं। और फिर सीधे हाथ से खाना खाएं, बैठकर खाना खाएं, अपनी तरफ से खाना खाएं, बीच से खाना ना खाएं, कोशिश करें तीन उंगलियों से खाएं, टेक लगाकर मत खाएं, उंगलियां और बर्तन बाद में चाट लें, बर्तन उसके लिए दुआ करता है, खलाल, फ्लॉस, टूथपिक वो करें, खूब चबा कर खाएं। मुझे बताइए मदनी चैनल के नाजरीन, ये को मैंने आपको 10-15 स्टेप्स बताए होंगे ओनली फॉर सेहत विच इज इनसाइड द डाइट, खाने में जो सेहत छुपी हुई है उसको मैंने आपको बताया, क्या मुश्किल है इसके अंदर। दिस इज द सीक्रेट टू हेल्थ, यही तो सेहत का राज है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 1, 2 एंड 3, खाना तो खाना ही है। आप ये तरबियत हासिल करें, इसको सीखें और सीखकर इसको अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें। और फिर देखिए, अगर आपने इस कलाम को मतलब सुना, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, अमीर अहले सुन्नत की किताब है, फैजान सुन्नत, शोहरा आफाक किताब है, पूरी दुनिया में इस किताब से दर्स दिए जाते हैं जिसको मदनी दर्स कहा जाता है। उस किताब में सेकंड चैप्टर है आदाब ताआम, आप इस बुक के अंदर ये सारी चीजें और इससे बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हैं। तो क्या करना है, पढ़ना है, क्या करना है, याद रखना है, क्या करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, और सबसे बढ़कर क्या करना है, अमल करना है। आपने जो अमल करना है ना, उसको देख के लोगों ने कहना है कि ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट एग्जीबिशन विच ए मुस्लिम कैन डू, कि उसको अमल करना है। तो फिर सीधी सी बात यही है कि जब ये सारा कुछ हमें पता चल गया, हमें मजीद एक्सप्लोर करने की जरूरत तो नहीं चाहिए, हमें कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकल कामिल तरीन है, और जब अकल कामिल तरीन हो तो यकीनन उससे एसोसिएटेड एक्शंस भी कामिल तरीन होंगे, और अब तो साइंस भी इसको साबित कर रही है। पेट के अमराज, कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखिए मदनी चैनल के नाजरीन, मोहब्बत के लिए मार्फत जरूरी होती है, अमल के लिए इल्म जरूरी होता है, यानी ये टू स्टेप स्ट्रेटजी है, नॉलेज एंड एक्शन। आइए दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन नॉलेज, ये जो भी आपने खाने की सुन्नतें और आदाब सुने, मैंने आपको बुक का रेफरेंस भी दिया, आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको नॉलेज आ जाएगा। अब नॉलेज के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट है, और वो पार्ट कौन सा है? एक्शन, अमल किस तरह करना है उसके ऊपर, ये बहुत अहम है। देखिए एक मोबाइल की बैटरी होती है, अगर मोबाइल की बैटरी फुल भी हो और वो मोबाइल के अंदर ना हो, मोबाइल नहीं चलेगा। मोबाइल की बैटरी फुल है लेकिन मोबाइल के अंदर नहीं है, मोबाइल नहीं चलेगा। आप फुल बैटरी को मोबाइल के अंदर डालेंगे तो मोबाइल चलेगा। यही इल्म और अमल की मैट्रिक्स है, और हम अमल नहीं कर रहे होते, और कभी कभार रुकावट क्या आती है कि जमाना क्या कहेगा। ऐसा लगता है कि वी आर एस्किंग फॉर परमिशन, हम दुनिया से जमाने से इजाजत मांग रहे होते हैं, यानी चुप करके बैठे होते हैं, डरे होते हैं और जमाने की हर बात मान रहे होते हैं। शादी का मौका आया, जो जमाना कर रहा है मैं भी वही करूंगा। वाह, किस किस को खुश करेंगे? सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप सबको खुश करने चलेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? आप खुद होंगे। और फिर जब आपको असाइनमेंट ऑफ लाइफ पता चल गई, प्रोजेक्ट का पता चल गया, अल्टीमेट ट्रुथ का पता चल गया, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर परमिशंस, इश्यू दिस वर्ल्ड द नोटिस, इस दुनिया को नोटिस इश्यू करें कि मैंने हक के साथ जो पहचाना है मैं उस पर अमल करूंगा, मैं दाढ़ी रखूंगा, क्यों? इसमें कामयाबी का रास पोशीदा है। मैं इमामा शरीफ पहनूंगा, क्यों? इसमें कामयाबी का रास पोशीदा है। मैं खाना भी खाऊंगा तो अपने आका की सुन्नत के मुताबिक, क्यों? इसमें कामयाबी का रास पोशीदा है। और ये सेहत के सारे राज ये इसी में पोशीदा है। और अगर कभी मिसिंग हो जाए ना, इस्तकामत ना रहे, एक दो दफा चीजें छूट जाए, तो डरिएगा मत, इट डजंट मैटर। इंसान की कामयाबी ये नहीं है कि मैं कभी नहीं गिरा, नहीं, कामयाबी यह है कि मैं जब जब गिरा हूं, गिरा नहीं रहा, बल्कि एक शान के साथ उठकर खड़ा हुआ हूं, जबरदस्त तरीके से उठ के खड़ा हुआ हूं। आई हैव नॉट गिवन अप, मैंने छोड़ा नहीं है उसको। और यह भी याद रखिए, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, बट व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। तरक्की और जीत इस तरह नहीं मिलती कि आपने कभी कभी कोई काम किया, नहीं, कंसिस्टेंटली, रोजाना इस्तकामत के साथ परसिस्टेंटली वो काम करेंगे तो तरक्की मिलेगी और कामयाबी हासिल होगी। इन सुन्नतों को अपनी जिंदगी में दाखिल कैसे करना है, ये चीज मुझे और आपको सोचनी है। लाइफस्टाइल बनाना है कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इनसेपरेबल पार्ट है, मेरी शख्सियत के अंदर ऐसे गुंद गई हैं ये चीजें कि मैं और ये अदाएं मेरे आका अलैहिस्सलाम की अलग अलग नहीं हो सकती। आई विल फॉलो देम, मैं जब खाने बैठूंगा इसी तरह खाना खाऊंगा। तो फिर इसके लिए मैं आपको चीज देता हूं जो आपको तकवीयत देगी, आपके इस जज्बे में आपका साथ देगी, वो है अच्छा माहौल। अच्छा माहौल, क्योंकि जब अच्छा माहौल होता है ना तो एक डिफेंस शील्ड बन जाती है, एक दफाई ताकत बन जाती है। दाढ़ी और इमाम है ना, ये इंसान को गुनाहों से रोकता है। कैसे भला? अब दाढ़ी और इमाम वाला को गुनाह करेगा, सबके सामने लानिया, लोग क्या कहेंगे? वो यही सोच के गुनाहों से रुक जाएगा। एक बात होती है ना कि मैंने सुन्नत रसूल सजाई है, मैं कैसे अब गुनाह करूं, ये डिफेंस शील्ड बन जाती है। इसी तरह जब आप अच्छे माहौल में आएंगे तो सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या मिलेगी? आपको अल्लाह का खौफ हासिल होगा, उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क मिलेगा, और बुजुर्गों का अदब भी नसीब होगा। मेरे मीठे मीठे इस्ताई भाइयों, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम देखते चले जाते हैं सेहत के राज के अंदर, जो हमें सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। और इसमें एक बहुत अहम चीज वो क्या है, वो हमारे पास है गर्म खाना ना खाना। यह भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है, गर्म खाना ना खाओ, उसमें बरकत नहीं होती। और आज साइंस साबित कर रही है गर्म खाना वो कैंसर की तरफ भी ले जाता है। खाना हाथ से खाने में कितनी बरकतें हैं इसका भी हमें मिलता है। और फिर हमारे सिलसिले का वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में मैं आपको एक हेल्थ टिप देता चलूं। कोशिश हमारी यही होगी कि हर सिलसिले के आखिर में आपको एक मुख्तसर सा हेल्थ टिप दें। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक तरकीब होती है, उसे कहते हैं डायाफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग। अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखिए और एक हाथ पेट पर रखिए। अब सांस लीजिए, छाती बाहर की तरफ आती है, पेट अपनी जगह पर बाकी रहता है, ऐसा होता है ना। लेकिन इस तरह नहीं करना, आपने जब सांस लेना है तो यूं तसव्वुर करना है कि सांस सीधा पेट में जा रहा है और पेट इन्फ्लेट हो रहा है और छाती अपनी जगह पर बाकी है। इसे कहते हैं डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। اور یہ انتہائی زبردست ایکسرسائز ہے، خاص طور پہ سٹریس، انگزائٹی اور ٹینشن کے مریضوں کے لیے. رات کو سوتے وقت لیٹ کر یہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں، ایک ہاتھ چیسٹ پہ، ایک ہاتھ پیٹ پہ، اور سانس اس طرح لینا ہے کہ پیٹ انفلیٹ کرے اور چھاتی کے اوپر بوجھ نہ پڑے. دوبارہ سے دیکھیے، سوچیں اپنے ذہن میں کہ آپ اس طرح سانس لے رہے ہیں، ناک سے لینا ہے، انہیل کرنا ہے، منہ سے ایکسہیل کرنا ہے. رات کو سوتے ہوئے اگر 20 منٹ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور دن کے وقت کسی بھی جب آپ کو ٹینشن کوئی فیل ہو، کوئی پریشانی آئے، بریک ڈاؤن ہو جائیں، آپ فوراً سے پہلے یہ ایکسرسائز کیجئے. 6-7-8 دفعہ کرنے سے آپ کو بہت سکون ملے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے. رمضان مبارک کی یہ بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ گزاریے. ہر سلسلے کی اپنی ایک زبردست بات ہے. انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک مائکرو سیکنڈ آپ کا نیکیوں میں گزرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.